अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम गोकेस की इंस्पायरेशन। तो हमने सियालकोट के होने वाले हालिया एक अंदोहनाक और शर्मनाक वाक्य से ही इसकी इंस्पायरेशन ली है, लेकिन बात इस पे हम थोड़े से बड़े कैनवस पर करेंगे। क्या हो रहा है ये सोसाइटी में, पाकिस्तान में, अभी जो हालिया वाक्य है इसके तनाजुर में आप क्या किस तरफ इस कैफियत को लेकर आए? जी डॉक्टर आबिद साहब,
बहुत शुक्रिया आपका भी और इमरान साकिब साहब और इसी तरह प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो इशू उठाया है वो वाकई एक सीरियस और जेन्युइन मसला है, और अगर हम इसको हालिया वाकयात के तनाजुर में देखें तो ये तो डे बाय डे हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, न कि उड़ान भर रहे हैं, और हमें इसमें बहुत सारे अवामिल को चेक करना पड़ेगा। एक समाजी साख्त है जो सोसाइटी का, एक जो स्ट्रक्चर है, खासकर जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, इसको भी रीचेक करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो समाजी अखलाकियात जिसको हम कहते हैं इसको भी देखना पड़ेगा। अगर जो है इसको हम एक मजहबी तनाजुर में अगर हम इसको देखना चाहें, तो क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से और फिर मुसलमान मुल्क है और वहाँ अक्सरियत जो है मुस्लिम कम्युनिटी की है, तो वो अगर अपनी इस्लामी तालीमात को भी देखें तो वो एक इंतहाई सिविलाइज तालीमात हैं जिसको जिसके ऊपर अमल दरामद वो नहीं कर रहे हैं, या फिर उन तालीमात की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है। ये दो चीज़ें मेरे ख्याल में मरकजी हैसियत रखती हैं। एक तो ये है कि जो इस्लामी तालीमात हैं उसकी गलत इंटरप्रिटेशन, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर अमल दरामत का न होना, एज ए मुस्लिम एक फर्द के उसके ऊपर अमल न करना। मैं थोड़ा सा आपको जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एकेडमिकल, उसमें मैं नहीं चाहूंगा बहुत ज्यादा डीपली किसी उसमें चले जाएं, जाहिर है कि आम पब्लिक से हम मुखातब हैं। मैं अर्ज कर दूं, देखें ये जो कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये बेसिक इस्लामी एक लॉ है और कानून है, दुरुस्त है अपनी जगह पर
जी।
मैं इसके हवाले से कुछ और बता दूं, ये एक जो इंसान है इसकी डिफिनेशन क्या ली जाए, तो पूरी इंसानियत कत्ल शुमार होती है। क्या वो एक इंसान मुसलमान है, किसी खास फिरके का इंसान है, किसी खास सेक्ट का? अगर मेरी आइडियोलॉजी से मैच करता है और इक्वल है तो वो इंसान है और उसका कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरी आइडियोलॉजी या मेरी नजरियात से मुखालिफ है तो बस वो इंसान नहीं है। ये अफसोस का जो मकाम है वो ये है कि ये दुरुस्त है कि इस्लाम का जो नजरिया है वो ये कि एक इंसान, इंसान मतलब इंसान है, उसका अकीदा, उसकी कौमियत, उसकी उसका जोग्राफिया कुछ भी हो सकता है, मिनहे से इंसान वो इम्पोर्टेंस रखता है, मिनहे से इंसान उसकी एक वैल्यू है। मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूँ नाजुल बलागा की तरफ, जिसमें जो मिस्र के गवर्नर बनाए थे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में, तो उनको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया था, बहुत से उसके अनामीन हैं जिसको यूनाइटेड नेशन भी मेरे ख्याल में रिकमेंड किया गया है कि जो रूलर्स हैं दुनिया में, हुक्मरान हैं, उनके लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मॉरल एथिकल हर हवाले से चीजें, उसके अंदर एक वर्ड है वो फरमाते हैं, मालिक जहन में रखो कि तुम्हारे सामने दो किस्म के लोग आ सकते हैं, अन्नास सिन्फानी, कहते दो कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, अखुल्लक फिद्दीन और नजीर उल्लक फिलखल्क, या वो हो सकता है आइडियोलॉजिकली तुम्हारे साथ इक्वल है, मुस्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखता है, मुमकिन है उससे आगे एक स्टेप आगे अली वलीउल्लाह भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो मुस्लिम है, या फॉर एग्जांपल ये मुसलमान नहीं है लेकिन अल्लाह का मानने वाला है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जरतुष्ट है, वो भी तुम्हारा भाई है, दीनी भाई, अखुल्लक फिद्दीन यानी दीनी भाई है, दीनी भाई की जो ज्यूरिस्टिक है या जो लाइन है वो कहां तक जाती है, अहले किताब तक, कह रहा चलो मालिक कोई बात नहीं है, आपकी इजिप्ट जो टेरिटरी है जिसमें आपको आप गवर्नर हैं, जिसमें आप रूल करेंगे, चले आपका दीनी भाई नहीं है, कहते नजीर उल्लाह का फिल खल्क, अरे तुम जैसा मखलूक तो है, तुम जैसा इंसान तो है,
बिल्कुल
ये बेसिक फिलोसफी है, वो जो कुरान मजीद ने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको हुकूमती लेवल पर, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ जाए। एक बात, दूसरी बात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चारों प्रोफेसर साहब को सुनूं और मुझे भी खुद इंटरेस्टेड है, मैं खुद जो है बोल रखता हूं। मैं अर्ज करूं कि छठे इमाम हैं, और छठे इमाम जो कि छठे इमाम अहले तशी के इमाम जाबर सादिक अलैहि सलाम, जो कि तमाम जो हमारे चार मजाहिब के अइम्मा हैं, इमाम शाफी, मालिक, हम्बल और इमाम अबू हनीफा, उनके उस्ताद भी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके, सब रेस्पेक्ट भी करते हैं। लास्ट टाइम स्ट्रासबर्ग में यहाँ फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद उस कॉन्फ्रेंस के जो आर्टिकल्स थे जो वहां पर डिस्कशन हुई थी उसको एक किताब की शक्ल में दी है, किताब की शक्ल दी है, इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ किस्म की इसके नाम रखे हैं। इंग्लिश में मेरे ख्याल में सुपर मैन इन इस्लाम है या सुपर ब्रेन इन इस्लाम, उर्दू में इसी तरह तर्जुमा हुआ है, फारसी अरबी में मग़्ज़ मुतफक्किर इस्लाम के नाम से हुआ है। तो लिहाजा जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ अहले तशी से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनली तकरीबन साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी, उनके पास उनके दौर में, हालांकि वो हुक्मरान नहीं थे हजरत अली अलैहि सलाम की तरह, जाहिरी हुकूमत नहीं रखते थे, लेकिन इमाम थे, अल्लाह के एक नुमाइंदे थे, उनके पास एक शख्स आता है, कहता है कि इमाम बात दरअसल ये है कि मैं जिस टेरिटरी में रहता हूँ वो नॉन मुस्लिम टेरिटरी है, मैं वहां पर अकलियत की शक्ल में हूँ, जैसे हम यहाँ यूरोप में अकलियत है। अब हुआ यह है कि वो जो टेरिटरी है उसमें दोनों नॉन मुस्लिम ग्रुप एक दूसरे के साथ जंग करने लग गए हैं, और मेरा जो कारोबार है बेसिकली वह वेपन बनाता हूं, जैसे तलवार बनाता हूं, ढाल बनाता हूं, मैं जो नेजे बनाता हूं, तो मेरा तो कारोबार बड़ा चमक उठा है, मेरी मार्केट चल पड़ी है। अब लेकिन मैं बीन एक मुसलमान और एक शिया के, मैं सोच में पड़ गया कि यार नॉन मुस्लिम, अब देखें उसकी मेंटालिटी क्या है, वो कह रहा है क्या नॉन मुस्लिम को वेपन बेचा जा सकता है एज ए मुस्लिम, तो मैं आपके पास आया हूं कि शरी मसला पूछूं। अब इमाम का आंसर सुने, इमाम फरमाते हैं देखें तुम वेपन बेचना चाहते हो, ये तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है तुम बेचो, दोनों ग्रुप्स को इक्वली बेचो, लेकिन कौन सा वेपन बेचोगे, वो जो डिफेंस कर रहा होता है, ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव वेपन, यानी नेजा नहीं बेचेंगे, तलवार नहीं बेचेंगे, ढाल बेचेंगे, जीरा बेचेंगे, इसलिए कि ये रोकती है, कह रहे इसलिए, अब देखें अगला वर्ड, इसलिए कि किसी भी इंसान का कत्ल खुदा पसंद नहीं करता।
वाह,
अब देखें कह रहे हैं कि देखें कारोबार भी तुम्हारा चले, लेकिन आपने जंग में हेल्प करने वाला वेपन नहीं बेचना, जंग को बचाने वाला, इंसान की जान को बचाने वाला वेपन आपने बेचना है, ताकि इंसान की जान बच सके, इंसान की जान लेने वाला हथियार कम से कम हो। ये मेंटालिटी इस्लामी तालीमात की, ये बेसिकली वो सिविलाइजेशन जिसको हम बात करते हैं, और हमारे इमरान खान साहब जो मदीने की रियासत एक रोल मॉडल के तौर पर, उनको चाहे कूफे की तरफ भी जरा देखो, चार साल साढ़े चार साल के उस पीरियड को भी चेक कर ले, वो भी एक आइडियल रियासत थी, उनको बहुत कुछ वहां मिल सकता है। इंटरनल जितने इश्यूज उठे थे, जितनी आइडियोलॉजीज की एक क्लैश हुई थी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की कुरान मजीद की, वो कूफे में हुई है, कूफे के चार साल पीरियड में मिलेगी। मैं नहीं कहूंगा उससे पहले को चेक करो कि फिर कवाराना बात हो जाए, लेकिन आप उसको जरूर देखें कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किस तरह हुक्मरानी की थी। आप मानते हैं वो बाबे मदनतुल इल्म है, तो जरा देख लें कैसी एजुकेशन उनके पास थी, किस तरह वो एजुकेट कर रहे थे और किस तरह की तालीम दे रहे थे। देखिये बस एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये सेक्टर्स हैं हुक्मरानों के लिए, पब्लिक के लिए। मैं अगर देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट बात कर रहा हूं, मैं अगर देखता हूं कि एक इंसान, दो इंसान लड़ रहे हैं आपस में किसी भी मैटर को लेकर, रिलीजियस मैटर हो, इंसल्ट वाला, तोहीन वाला, ब्लास्फेमी वाला, कोई भी मैटर हो, मुझे क्या करना चाहिए, एक मॉब बनाकर अटैक करना चाहिए, हुजूम लेके एक तो बगैर तहकीक के कूद पड़ना चाहिए जैसे हो रहा है इस वक्त हमारे पास, मेरा किरदार क्या है? मेरा किरदार यह है कि मैं जाके उनको अलग करूं, सबसे पहले उनकी लड़ाई खत्म करूं, उसके बाद असल मसले को चेक करूं, और फिर कानून को सामने ले आऊं। कानून किस लिए बैठा हुआ है? हम हुकूमत किस लिए बनाते हैं? इलेक्शन क्यों कराते हैं आप? फिर क्यों जाके वोट देते हैं आप? किस लिए आप जो है पुलिस और इनको तनख्वाहें दे रहे हैं? इनका काम ये है, ये मैं और आपका काम नहीं, उठे और एक मॉब बनाए, ग्रुप बनाए, जैसे गुंडे और बदमाश करते थे। मैं जिस मुल्क में रहता हूं, यहाँ की सिचिली माफिया बड़ी मशहूर है, माफिया का काम ना करें हम। माफिया का काम इस्लाम के नाम पर नहीं हो सकता, माफिया के नाम रसूलुल्लाह के नाम पर नहीं हो सकता, माफिया का काम कुरान के नाम पर नहीं किया जा सकता। ये माफियाई काम है, ये गुंडों वाला काम है, बदमाशों वाला काम। हो सकता है कि बाज लोग कहें मौलाना आप जरा एहतियात, एहतियात की बातें खत्म हो चुकी हैं, हम लिमिट क्रॉस कर चुकी है हमारी सोसाइटी, कब तक हम इन चीजों को छुपाते रहेंगे, कब तक हम रवादारी और थोड़ी सी वो देखें नहीं, ये वक्त ये हमने किया तो जिसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं आज, आप कुरून वुस्ता की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में इंटर होने से पहले, और रोनिसांस और डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब बेहतर हमें इस मसले में बताएंगे। आप देखें कैसे उस वक्त हुआ, ये स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री उठा के देखें, जहां ऑफिशियल मेरी जिम्मेदारी है, स्विस की आप दिखा के हिस्ट्री उठा के देखें, ये तो पनाह लेने गए थे उन पहाड़ियों के ऊपर, चरागाहें थी वो जी। और वो एक कंट्री की शक्ल में आखिर में जाके डेवलप है, इसलिए वो एक नेशन नहीं है, लैंग्वेज भी उनकी एक नहीं है, एक पार्ट में फ्रेंच, दूसरे में जर्मन, तीसरी में इटालियन, चौथे में ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज बोली जाती है। देखिए ये लोग यहां से गुजरे हैं, हम चाहते हैं कि हम भी गुजरे वही एक्सपीरियंस हम करें, अभी हो चुका है, आप क्यों एक्सपीरियंस को रिपीट करते हैं? ह्यूमन तो बार बार रिपीट नहीं करता। अरबी का एक मकूला है, मन जर्रब अल मुजर्रब फअक्लुहु मुखर्रब, कह रहे कि जो आदमी बार बार एक चीज को एक्सपीरियंस करे उसकी अकल पर शक करना चाहिए कि कहें वो अकल से बेबहरा तो नहीं है। देखें बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, प्रोफेसर साहब से काफ़ी इस्तेफादा किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखें ये जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतफाकन ये हमारी भी नज़र से गुजरी है, और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि कैसे जो जिम्मेदार लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं हमारी, उनकी नज़र से अभी तक ये वीडियो नहीं गुजरी है। अगर गुजरी होती तो यकीनन ये लोग पकड़े जाते और इस जुर्म के जाहिर कानून के मुताबिक अमल दरामत हो जाता है। इसके ऊपर न पकड़े जाना और अभी इस वीडियो का सामने आना, ये इस बात की दलालत है कि ये नॉर्मल सी बात थी, इसको वीडियो बनाई और आराम से लोड कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। उस वीडियो के अंदर जो चीज बताई जा रही है एक हदीस को लेकर, पहले तो उस हदीस के खुद उसकी कितनी हद तक सच्चाई उस हदीस की है और कितनी अथेंटिक है वो एक डिबेट है, और दूसरी हदीस खुद हमारे अहले सुन्नत उलेमाए कराम, क्योंकि उनकी हदीस किताबों में ज्यादातर ये हदीस मौजूद है, तो वो भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क रखते हैं। इल्मी एकेडमिकल पब्लिकल स्पीचेस में वो एक अलग मौजू है, अवाम को भड़काने वाली बातें करना, लेकिन जब आप एकेडमिकल बाउंड्रीज पर बात करेंगे तो फिर इल्मी बातें होंगी। दूसरा ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाए, किस तरह समझ जाए, क्योंकि मुकाबले में कई वाकयात हैं जिसको हम कहते हैं अमली सीरत। देखिए हुजूर पाक की सिर्फ हदीस हमारे लिए शरी दलील नहीं है, आपका किरदार जो अमलन प्रैक्टिकली जो आपने अंजाम दिया है वो भी हमारे लिए सबके ऊपर मुत्तफिक है, तमाम उलमा इसके ऊपर, इसमें कोई फिरके वाली बात नहीं है। तो मैं एक नमूना इस हदीस के मुखालिफ हुजूर की अमली जिंदगी से दे देता हूं, और फिर कहते हैं अब ले आए इसकी इंटरप्रिटेट करें अब इस हदीस को, वो ये है, ये सबके पास मौजूद है ये वाकया जो मैं नकल कर रहा हूं। मस्जिद में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर पाक तशरीफ लाएं, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज जमात को लीड करें, देख रहे हैं हुजूर पाक तशरीफ नहीं ला रहे हैं, लेट हो गया था, ये तो उनकी जो नॉर्मल एक रूटीन और स्केचुअल होता था उसके बिल्कुल बरखिलाफ है, कहा कि कैसे पॉसिबल है अल्लाह के रसूल लेट करें नमाज के लिए। कुछ मुसलमान गए कि कहा जी जरा पता तो कर लें कि हुआ क्या है, गए तो रास्ते में देखा कि एक नॉन मुस्लिम हुजूर पाक के गरेबान मुबारक में यूं पकड़ा हुआ है और इतना उसको वो मरोड़ रहे हैं कि रगे यहां पर जो है वो ब्लड जो है फूले हुए नजर आ रहे हैं रगों के अंदर, और हुजूर पाक से कह रहे हैं नहीं अभी दे दो, नहीं अभी दे दो, अलान अलान कहता है अभी अभी मुझे पे करो। ये मुसलमान जो थे जाहिर है गुस्सा तो आया इनको, गए तो हुजूर पाक ने इनको हाथ के इशारे से रोक दिया, कहा कि आप बैठे रहें। कहा मसला क्या था कि वो नॉन मुस्लिम ये क्लेम कर रहे हैं जी कि आपने कुछ पैसे मेरे देने हैं, मेरा कर्जा आपके ऊपर है, आप अभी पे करें। हुजूर पाक कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं है, मुझे नमाज पढ़ाने दो, लोग वेट कर रहे हैं, नमाज के बाद अब आया ना मेरे साथ घर, हम चलते हैं, मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ। हुजूर पाक डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मैंने नहीं देना है, और इन रियल हकीकत यह है कि वो झूठा क्लेम कर रहा है। जस्ट मेरे ख्याल में अब जो स्टोरी है, इतने में और मुसलमान मस्जिद से निकल आते हैं नमाजी, कह रहे हैं भाई ये तो जो दो गए थे वो भी नहीं आ रहे हैं, तो कोई बड़ी अनहोनी बात हो गई है। जाहिर है मुसलमानों को गुस्सा तो आया, तो हुजूर पाक कह रहे हैं दाऊ छोड़ दो, मैं जानू ये जाने। जब वो शख्स ये देखता है कि हुजूर पाक इतनी बड़ी ताकत रखते हैं, एक मॉब रखते हैं, और लेकिन जो है हुजूम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हुजूम को मेरे खिलाफ नहीं लगा रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि वो शख्स हुजूर पाक के गरेबान मुबारक को छोड़ देते हैं और कहते हैं जी कि मुझे माफ कर दे, मैंने झूठा क्लेम किया था, मैं सिर्फ जज करना चाह रहा था कि आप वाकई अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह की तरफ से आप तशरीफ लाए हैं, یہ حضور پاک کا اخلاق تھا کہ وہ شخص حضور پاک کا گرویدہ بن جاتا ہے اور آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور آپ کے اوپر شہادت پڑھ لیتا ہے. اگر اس وقت فرض کریں یہ ہجوم حملہ آور ہوتا اس کے اوپر, وہ تو چھوڑیں, اگلی اس کی کئی نسلیں جو ہے پھر اسلام سے نفرت کرتی. یہی بات ہم آج کہنا چاہ رہے ہیں تمام امت مسلمہ کو اور تمام ذمہ دار لوگوں کو, دیکھیں چند لوگوں کے بد اسلامی کو بد مسلمانی کی قیمت پورے مسلمان کیوں پے کریں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک گروہ کی بد دینی کو, بد عقلی کو, بد اخلاقی کو, بد اسلامی کو, بد انسانی کی قیمت ہم پے کر لیں, پورے مسلمان پے کریں اس کی قیمت اور اس کا ڈیفنس کرنے پہ آ جائیں, کیوں؟ یہ کہاں کی اخلاقیت ہے؟ اور وہ دین سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں بنتا. آپ حضور پاک کے اخلاقی چیزوں کو کیوں نہیں بیان کر؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں حضور پاک کے اخلاق سے دین پھیلانا کہ تلوار سے, جو درست کلیم ہے, تو پھر آپ تلوار کیوں نکال رہے ہیں بات بات کے اوپر؟ آپ چھوٹی سی بات کو لے کر کیوں ڈنڈے لے کے اترتے ہیں؟ کیوں ہجوم لے کے آتے ہیں؟ حضور کے پاس ہجوم تھا لیکن استعمال نہیں کیا. ایک دم مطلب ہجوم ڈیفنس کے لیے اگر کوئی وار ہوئی ہے, وہ جنگیں ہیں, وہ کلیئر ڈکلیئر شدہ ایک وار ہے. وار کے اپنے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اس کے اندر ہوتی ہیں, وہ بھی کوئی ایسی کوئی اندھے بھیل کی طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. ایک نمونہ ایسا کوئی اٹھا کے دے دے کہ حضور پاک نے مدینے سے ایک ہجوم اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو فلاں شخص کیونکہ میرے خلاف بول رہا ہے, لہٰذا جائیں اس کی زبان بند کر دیں, ہم اس کی زبان کو گدی سے اکھاڑ کے پھینک دیں اور وہیں کہیں فقتلوہ فقتلوہ, یہ رٹا لگوا دیا ہے فقتلوہ فقتلوہ. اب آتے ہیں یہاں پر ریاست. پروفیسر صاحب نے اشارہ کر دیا کہ ہمیں 80s اور 90s اور بلکہ اس سے پہلے آوے کا آوا بکھرنا شروع ہو چکا تھا, اور ضیاء الحق نے تو پھر ظاہر سارے جیسے قرارداد پاکستان کے حوالے سے بیان کیا. دیکھیں سٹیٹ جب فرقہ واریت اپناتی ہے, سٹیٹ جب فرقوں کی سٹیٹ بنتی ہے, یہ ملک جو کہ سب کے لیے تھا, قائزم نے اس فلسفی اور اس کے اوپر اور علامہ اقبال نے اور دیگر لیڈرز نے کہ سب کے لیے جو بھی اس ٹیریٹری کے اندر رہتا ہے, جو اس کا عقیدہ ہے, دین ہے, مذہب ہے, جو بھی ہے, قومیت ہے, لسانیت ہے, اگر آپ یہ ختم کر دیں گے اور سٹیٹ ایک فرقے کی سٹیٹ بنے گی تو پھر وہ معاشرے زیادہ دیر نہیں رہتے ہیں. اس لیے ہم یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نا, ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے نا, گر رہا ہے, ہم گر رہے ہیں. آپ اکانومی کو دیکھیں, معذرت میرا یہ سیکشن میری یہ اسپیشلٹیز نہیں ہے لیکن میں دائرے ایز اے سٹیزن میں بات. آپ اکانومی کو دیکھیں, بنگلہ دیش جو ابھی اپنے انڈیپینڈنٹ ڈے منا رہا تھا, آپ ان کی جی ڈی پی دیکھیں, آپ ان کی فی کس آمدنی کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں آپ, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈے بائی ڈے ہم نیچے گر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ جرمنی کو لون دے رہے تھے, آپ جو ہے دوسروں کی کیا کہتے ہیں کمپنیز کو لانچ کرتے تھے, ایئر لائنز بناتے تھے, آپ تھے جو جا کے پورے مڈل ایسٹ کو سکھا رہے تھے, ایجوکیٹ کر رہے تھے, دے رہے تھے, ٹیکنالوجی سے لے کر ہر چیز کے اندر ادارے بنا رہے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ فٹ اپ سے گھبراتے ہیں, آپ کسی اور جو ہے پابندی سے گھبراتے ہیں, عالمی سطح پر اپنے امیج کو بنانے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں, اور اندر ہے کہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں, پریشر کے ذریعے سے آپ کے قانون میں تبدیلی کرائی جاتی ہے, یا ایک مائنڈ سیٹ آتا ہے جو فرقہ وارانہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, یا اس کی ڈکٹیٹر کی اس وقت کی نیڈز ہیں, اس کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے کچھ قوانین کو چینج کرنا ہے, وہ چینج کر لیتے. یہ دیکھے بغیر کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا پڑیں گے, ان دا لانگ ٹرم کیا ہوگا. یہی صورتحال ایجوکیشن میں ہے, سلیبس میں ہے. کس نے کہا کہ آپ دین نہ پڑھائیں؟ بھائی آپ مسلم سوسائٹی, آپ دین کیسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کی آئیڈینٹیٹی, آپ نے ملک کس بیس کے اوپر بنایا ہے, پڑھائیں. لیکن کون سا دین؟ وہ جو ایک فرقہ پرست مولوی کی سوچ کا دین, یا پیغمبر اسلام کا دین؟ کون سا دین؟ وہ جو ایک فرقہ پرست شخص ہے جو اپنا من پسند آئیڈیالوجی پڑھانا چاہتا ہے, یا قرآن کا نظریہ؟ قرآن مجید تو سب سے زیادہ ورڈ جو استعمال کرتا ہے وہ انسان ہے, یا ایو الانسان, فرماتا ہے کہ یہ کتاب آئی ہی انسانوں کے لیے. اب میرا یہاں پر ایک کوشچن ہے, کیونکہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ہمارے کرسچنز کے اوپر اور ہندو ہمارے سٹیزنز کے اوپر, ان کے اوپر الزامات لگائے جیسے قرآن جلا دیا, یہ کیا, وہ کیا, قرآن کو چھوا, مسجد میں آیا تھا, پیشاب کیا, فلان ہو گیا, اس کے مدرسے کے صحن کے قریب یا دیوار میں کھڑے ہو کر بچے نے پیشاب, اس کے اوپر بستیاں جلائی جاتی ہیں, یوحنا آباد کی جیسے آپ اگزامپل دے رہے تھے, لوگوں کے گھر جلائے جاتے ہیں, لوگوں کو مارا جاتا ہے. سوال یہ ہے, قرآن مجید کہہ رہا ہے خدا للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. لوگ کا ہے، مسلمان نہیں کا. اب لوگوں کو یہ کتاب دیں گے نہیں، وہ اس کتاب کو تھامیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں، گھر میں نہیں رکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو کیسے ہدایت پائیں گے؟ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں آپ. کیسے ایک نان مسلم کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو اسٹڈی کرے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، تو انسانوں کو قرآن دیں گے نہیں آپ. ظاہر ہے ہر انسان کے اپنے، آپ کے پاس ریسپیکٹ اور ڈس ریسپیکٹ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ آپ کی، آپ یہ دیکھیں وہ قرآن کے حساب سے ہے یا آپ کی روایات ہیں، آپ کے رسم ہیں، آپ کے رواج ہیں. آپ رواج میں، مثلاً میں مثال دیتا ہوں، ہم ساؤتھ ایشین کے ہاں جوتوں کو مسلح کے پاس رکھنا برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو ڈس ریسپیکٹ قرار دیا جاتا ہے، لیکن عرب مسلمانوں کو دیکھیں، میں مڈل ایسٹ میں رہا ہوں، میں یو اے ای میں رہا ہوں، میں سیریا میں، وہاں سے میں نے عربی میں ایڈوانس ڈپلوما کیا ہے لینگویج کے اندر. میں سارے ریجنس کو جانتا ہوں، میں حج کے لیے بھی گیا ہوں، میں سارے ان کی ثقافت کو جانتا ہوں. میں ایران میں رہا ہوں، افغانستان، آذربائیجان، سارے ان خطوں کے اندر سے جو ویسٹ ایشیائی ریاستیں، بھائی ان میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. وہ لطیفے بنتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جی جوتے پیچھے رکھنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں پیچھے رکھیں گے تو جوتے نہیں ہوتے، کہتے آگے رکھو گے تو نماز نہیں ہوتی ہے. یہ لطیفے بنتے ہیں.
جی.
ہم تیار نہیں، ہم امت مسلمہ کو چند غلط طریقے سے دین کی تشریح کرنے والوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پاکستان کی اکثریت کیوں قیمت پہ کرے چھوٹی سی ایک اقلیت کی بدماشی اور غنڈا گردی کو، چاہے وہ اس ریاست کے اندر کسی اہم عہدے پر ہیں، پولیٹکس میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، یا سڑکوں پر موب کی شکل میں ہیں؟ کیوں ملک قیمت ادا کرے؟ کیوں پوری امت قیمت ادا کرے کہ اسلام کا چہرہ آپ برا بنا کر پیش کریں؟ ابھی دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد کون قبول کرے گا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے؟ کون قبول کرے گا کہ اسلام اخلاق سے، اخلاقیات سے، پیار و محبت سے، انسانوں کو گلے لگانے سے، انسانوں کے دکھ درد میں شامل ہو کر اسے دور کرنے سے پھیلا ہے؟ کون قبول کرے گا؟ کہے گا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے، واقعا سچ بول رہے ہیں آپ، تو پھر آپ خود تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے. آپ تو اپنے مسئلوں کے سلوشن کے لیے، اپنے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ موپ لے کے آتے ہیں، آپ ہجوم کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، آپ جلا کر، آپ ڈنڈے مار کے حل کرتے ہیں، دوسروں کو بتا نہیں نہیں اسلام تو بڑے پیار. یہ کنٹرڈکشن ہے، ہم اپنے کردار میں کنٹرڈکشن کہتے ہیں. جی اسلام کو آپ نہ دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، اسلام کو کہاں دیکھے پھر وہ؟ درست ہے میں اس کو تھیوریٹیکلی اکیڈمک اس کے اندر میں مانتا ہوں، لیکن جب آپ پبلک کے اندر بات کر رہے ہوتے، ایک عام آدمی سے بات کرتے ہیں، عام انسان سے، اس کو کہیں مسلمانوں میں اسلام نہ ڈھونڈیں، اسلام کو آپ جو ہے کتاب کے اندر اور حدیث میں دیکھیں، بھائی جان پھر یہ ایک ایسا دین ہے جو مسلمان بھی نہیں اپنا رہے ہیں، کیونکہ ان میں تو تلاش نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کس قسم کا دین ہے؟ کس میں جا کے تلاش کریں؟ ویسے کتاب آئی ہوئی ہے، نعوذ باللہ ونستعیذ باللہ،
جس کو پھر غیر مسلم ہاتھ میں لگا سکتا، بلکہ مسلمان بھی وضو کے بغیر تو نہ. آغا صاحب ابھی اگر آپ یہ جیسے آپ نے بتایا، اور ہے بھی ایسا کہ اس کو سب کو پڑھنا چاہیے، مسلم غیر مسلم، چونکہ یہ تو حدن للناس ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ اگر غیر مسلم پکڑے گا تو پھر وضو تو اس نے نہیں کیا ہوا ہوگا، تو یہ کہاں سے پھر وہ ہو سکتا ہے عملی طور پہ اس کو کیسے؟ یا یہ بات غلط کی گئی ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، تو کیوں یہ اس قسم کی باتیں پھر مارکیٹ میں ہیں اور اس کو کنڈیم کیوں؟
بات جو ہے نا وضو والی بات تو آئے گی بعد میں،
جی
وہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے نا، ایک فقہی مسئلہ ہے. اور سوال یہ ہوگا کہ یہ جو وضو والا مسئلہ ہے، یہ ایک مسلمان جو اس کتاب کو ایز اے اللہ کی کتاب ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ہے یا ہر کسی کے لیے؟ یہ ایک اکیڈمک بحث میں ہم چلے جائیں گے، اجتہادی بحث کے اندر، کہ بھائی ہر انسان کے لیے ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے ہدى للناس، میں لوگوں کی ہدایت، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو. یہ بعد میں آ رہا ہے مسلمون، مومنون، جیسے پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ آپ اگر دیکھیں قرآن مین کس ٹائٹل کو لے کے زیادہ ایڈریس کرتا ہے، تو وہ انسان ہے، ہیومن ہے. یا ایوہ الانسان، یعنی ہندو، سکھ، مسلمان، وہ جو اللہ کو مانتا ہے، ملحد ہے، نہیں ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، ڈزنٹ میٹر بھائی، یہ انسان ہے. یا ایوہ الانسان،
کہ جیسے ابھی بات ہو بھی رہی تھی کہ جو توہین رسالت کا ایشو ہے، اس میں کیا صرف رسول کے نام کی توہین کرنا ہی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، یا رسول کا حکم نہ ماننا بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اگر دوسری بات یہ ہے ایسے ہی کہ ان کا حکم ماننا ماننا بھی توہین رسالت میں آتا ہے، تو پھر ہر جھوٹ بولنے والا اس کو بھی پھانسی لگنی چاہیے، हर वो फर्द जिसने कोई एक हुक्म नहीं माना रोजे अव्वल से लेके आज तक, क्या इन सब पे फिर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम होना चाहिए या नहीं? ये शॉर्टली इसका जरा आंसर कर दे और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन अपना
जी। देखें, दो मसले हैं। एक वक्त है कि वो रसूल के बयान करदा दीन के किसी हिस्से का इनकार करता है, और एक वक्त है कि वो उस पर अमल नहीं करता है। अमल नहीं करता है वो मुजरिम है, गुनाहगार है, और अगर वो डायरेक्ट इनकार करता है तो उसके अपने फिर जो है असरात होंगे और फकी मसाइल होंगे, जो कि हर जमाने में जो फकहा और मुफ्तियान हैं उनका काम है कि वो उस वक्त के हालात के मुताबिक इज्तिहाद के जरिए से उस मसले को देखें कि क्या जो है उसे आप इस्लाम से बाहर करना चाहेंगे या उसको एजुकेट करना चाहेंगे। मैं यहाँ से ही दो अहम नुक्ते बयान करना चाहूंगा
जी।
देखिए, एक टर्मिनोलॉजी वैसे मेडिकल में यूज होती है लेकिन अब रिलीजियस और सोशल इश्यूज में भी यूज होने लगी है, वो जिसको आप कहते हैं कि मजहबी आसिफ शिनासी या पैथोलॉजी जिसको आप कहते हैं। हमें एक तो ये पाकिस्तान के अंदर देखना होगा कि जो मजहबी हम सोच वहां पर दे रहे हैं, तशरीहात दे रहे हैं, उसमें कहां कहां पर क्या सुकम है और क्या खामियां हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा, जो तौहीन का कानून है, इस कानून के अंदर जो है अमेंडमेंट की जरूरत है और एक शक का इजाफा होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि अगर कोई कहें पर इस तरह का वाकया होता है और ये प्रूफ हो जाता है
जी
कि ये वाकयान इंटेंशनली बाई नियत के साथ उसने ये हरकत की है, वो नहीं कि बेचारे को पता नहीं है, बच्चे को पता नहीं है कि ये क्या है, और अगर वो तौहीन भी नहीं है, मदरसे की दीवार में पेशाब करना तौहीन कब से हो गई है भाई? ये कहां से हो गई है? मस्जिद के अंदर टॉयलेट बनाए हुए हैं तो वहां पेशाब करना फिर बड़ी तौहीन हो जाएगी, इसका मतलब तो ये हुआ। मदरसे की दीवार के पास नॉन मुस्लिम बच्चे ने पेशाब किया तो उसको तौहीन डिक्लेयर कर दिया और उसके खिलाफ फिर वही वो हुजूम वाला मसला। ये जो चीजें हैं इसको क्लियर करने की जरूरत है। और दूसरा, जब शक जो है वो ये होनी चाहिए कि अगर कोई तौबा कर लेता है, कोई कहता है जी गलती हुई है मुझसे, तो उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के कानून है। आप उधर सर तन से जुदा पर फोकस रखते हैं, माफी के ऊपर तो आप बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, अब वो दरगुजर के ऊपर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर पाक पूरे मक्के के जिन्होंने जंगे लड़ी, जिन्होंने इतने अजीम लीडर्स और कमांडर्स को शहीद कर दिया, हजरत हमजा सईद शोदा का टाइटल रखते थे, जानिसार हुजूर के साथियों को शहीद कर दिया, और हुजूर जानते हैं मक्के में जो लोग जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो अंदर से नहीं है मुसलमान अभी, यानी वाकई कबूल नहीं किया है, फिर भी कहते हैं हमें कबूल है। अबू सुफियान सबसे बड़ा दुश्मन, कहते हैं उनके घर में जाओगे तो पनाह जो भी लेगा उसे माफ की नहीं। हुजूर पाक तो ये माफियां देते हैं पूरे एक शहर को, आप यहाँ पर माफी के लिए तैयार नहीं? हुजूर की सीरत के इस हिस्से की इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिहाजा हमें फर्क करना होगा जो टर्मिनोलॉजीज है। माजरत चाहूंगा मैं एकेडमी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। एक बहस होती है एक वक्त, इल्मी कंफ्यूजन है, शुभ ये इल्मी है जिसकी वजह से किसी शख्स ने ऐसी कोई बात कही कि इल्मी तौर पर उसने अंडरस्टैंड ऐसे किया है उस चीज को, आप उसको कर दे मसलन एहले तशी के ऊपर माजर, मैं नहीं कि शिया हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं लेकिन ये हकीकत है, अब आप मान इसको जो है हर कोई मानता भी है। एहले तशी के ऊपर फौरन इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने तौहीन मसलन मजहब किया है कि वो क्योंकि अपने शिया अकायद को बयान कर रहा है, वो गदीर को डिफाइन करता है, वो मसले फिदक को डिफाइन करता है या इस तरह के इश्यूज को डिफाइन करता है, हालांकि उसको भी इल्मी एकेडमिक बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए डिफाइन करता, लेकिन वो फौरन उसके ऊपर तौहीन मजहब लगा दिया या तो सहाबा की तौहीन हो गई है वगैरह वगैरह कर लिया। लिहाजा देखना होगा एक मरतबा एकेडमिक डिबेट्स के अंदर कोई ख्याल और तस्वूर पेश होता है, आप डिबेट करें उसके साथ, हुजूम लेके ना जाएं उसको, 95C के तलवार को उसके ऊपर ना इस्तेमाल करें नाजायज तरीके से। एक मरतबा एक आदमी शरारत करता है जानबूझकर नियत के साथ, जिसको हम कहते हैं शहाबत अमली एकेडमिक जबान के अंदर, अगर वो शरारत कर रहा है वाकई वो चाहता है कि दूसरे के मजाहिब और उसके पास जो वैल्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं, मुकद्दसात हैं, उसकी इंसल्ट करना चाहता है बाय इंटेंशन, जाहिर है वो तो दुनिया की हर जगह में, अगर आप किसी मुल्क के झंडे को जलाएंगे उस मुल्क के अंदर या उसके कानून को वायलेट करेंगे या उसके जो हीरोज हैं उसको के खिलाफ आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक अंडरस्टूड चीज है, अंडरस्टूड एक चीज है, स्टैंडर्ड है ये, हमें ये फर्क करना होगा। लिहाजा 95C के अंदर, क्योंकि अभी अमेंडमेंट वाली जो बात है या उसको जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं नहीं समझता कि आपका इतना हाईली अनएजुकेटेड ट्रेडिशनल ज्यादा वो माशरा इतनी जल्दी वापस रिवर्स हो सकता है और इसको एक आकिलाना तरीके से वो कर सकता है। अभी हमें जो चीज चाहिए वहां पर वो ये चाहिए कि अगर देखा जाए ये शरारत है या इससे गलती हुई है, गलती हुई है माफी है, शरारत है तो उसके अंदर भी स्टेट का काम है, स्टेट देखे कि इस शरारत के पीछे भी बेवकूफी तो नहीं थी, इसकी मिसगाइड तो नहीं हुआ था, किसी ने इसको गलत रास्ते पे तो नहीं डाला। हजारों रास्ते, इंसानी जान का कत्ल आसान नहीं है, इंसान के कत्ल को इंसानियत के कत्ल से क्यों ताबीर किया है, मुसलमान नहीं कहा, एक ह्यूमन, ये आसान नहीं है
जी, ये तो उस वक्त बात होगी ना जब कानून तक ये बात पहुंचेगी, ये तो तब डिफाइन होगा।
लेकिन तभी हम बात कर रहे हैं, ये तो हम उन लोग
मॉब लेके जो निकल पड़ते हैं इसको,
ये तो हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं ना जहां पर कानून चलता हो, हमारे पास तो यहाँ कानून नहीं, मॉब चलता है ना, मॉब कानून बनाता है। मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, वो ये है पाकिस्तान में जैसे प्रोफेसर साहब ने इशारा भी किया उस तरफ, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की सोच और मेंटालिटी स्टेट से सोसाइटी की तरफ आई है, सोसाइटी से स्टेट को प्रेशराइज करके मनवाया नहीं गया, अब हो रहा है। अब मसला जो है वो कंबल नहीं छोड़ रहा है, अब उलझने के बाद कंबल अब जान नहीं छोड़ता, सोसाइटी अब नहीं छोड़ रही, क्योंकि आपने ऐसे चीज बना दिए है, तैयार कर लिए, जो हमारे वजीर इत्तलात हैं उन्होंने जो कहा टाइम बॉम्ब्स आपने बनाए वो अब फटने लगे हैं, अब आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम फिक्स है उसके अंदर, आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं अभी। ये एक बड़ा मसला है, इसके लिए एक वसी तर काम की जरूरत है। एक और मसला जो आपने प्रोफेसर साहब ने इशारा कर दिया, मैं चाहूंगा एक हल्का सा कमेंट्स करूं, वो सऊदी अरबिया मक्कतुल मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा, यानी मेरे ख्याल में उससे बड़ी ज्यादा मुकद्दस जगह किसी भी मुसलमान के लिए नहीं है, खाने काबे से और रोजे रसूल से, बाकी तमाम मुकद्दस मकामात और सरजमीन बाद में आ जाती हैं, पहले जो आता है वो अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का जो है शहर और रसूलुल्लाह का रोजे मुबारक है। यहाँ पर जो हुक्मरान है वो तो उस फ्रांस के हुक्मरान को वेलकम करके अपने पास बुला रहे, जिसके सफीर को जो बेचारा अपनी स्टेट का को रिप्रेजेंट करता है उसको निकालने के लिए आपने दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले मारे हैं, आपने इकोनॉमी को पतरे ट्रिलियंस का डॉलर का नुकसान पहुंचाया, लोगों को मारा है, पूरी एक एनवायरमेंट आपने शिद्दत पसंदाना खड़ की है, आपने रसूल के नाम के साथ कत्ल, डंडा, गोली, तशद्दुद को मिक्स कर दिया। वो जो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो जो रऊफुर रहीम के नुमाइंदे हैं, उसको आपने एक ऐसी एनवायरमेंट क्रिएट कर दी है। अब आप क्या कहेंगे इसके लिए, आप हज का बायकॉट करना तैयार करें, तैयार हैं आप, चले आप रैली निकालें, कल प्रोटेस्ट करें कि आप क्यों कर रहे हैं, आप उम्मत मुस्लिमा के इतनी मुकद्दस जमीन के वली व वारिस हैं और खादिम हरमैन शरीफैन हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें ना। वो तो प्रेसिडेंट ने शाम के जो वजीर आजम हैं, सदर हैं फ्रांस के, उन्होंने तो स्पीच में कुछ क्रिटिसाइज भी किया था आप लोगों को और हमें, और जायज क्रिटिसाइज हो सकता है वो, लेकिन सफीर बेचारे ने तो एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, एक ट्वीट भी नहीं की थी, आप उसको निकालने के लगे हुए थे। वो जिसने बात भी की है वो तो वहां पर बैठा हुआ है मुकद्दस सरजमीन के ऊपर। देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है, अफसोस ये है, आखिरी बात जो है वो ये है, अफसोस का मकाम ये है कि दीन की बागडोर और मस्जिद और मेहराब ऐसे लोगों के हाथों में आया है जो अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, नदीम को। मैं फिर लौटता हूं आखिर में नाजुर बलागा की तरफ और उसी लेटर की तरफ जो कि मालिक अश्तर मिस्र के गवर्नर को दिया था, फरमाया था मालिक इन हाज़िह दीन कद कान असीरन फी कैदिल अशरार युअमलु बिहिल हवा व यतलुबु बिहिद दुनिया। मालिक एक बात और भी जहन में रख लो, जिस सोसाइटी में तुम जा रहे हो ना, उस सोसाइटी में दीन की तशरी दुनिया परस्त लोगों ने, अपनी दुनियावी इक्तदार को बढ़ाने की ख्वाहिश रखने वालों ने दीन की इंटरप्रिटेशन की है, अपनी जाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दीन की तशरीहात हो चुकी हैं, अपने डेढ़ इंच की मस्जिद को बचाने के लिए या उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, अपनी शख्सियत की डोमिनेशन के लिए लोगों ने दीन की इंटरप्रिटेशन की है, लिहाजा तुमने ओरिजिनल दीन एजुकेट और टीच करना है वहां पर। इन नहाज, अब लफ्ज जो तर्जुमा है मेरे ख्याल में बहुत सौ को हजम ना हो, लेकिन मैं कर देता हूं, इन नहाज़िहि दीन कतकान असीरन फी कैदिल अशरार, शर पसंदू के हाथों में ये दीन असीर था, कैदी था, योमलु बिहिल हवा, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी जाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दीन को टूल के तौर पर यूज कर रहे थे, व यतलुबु बिहिद दुनिया, और दुनियावी मकासिद के हुसूल के लिए दीन को एक हथियार बना के वो यूज करते थे, खुदा की रजा के लिए नहीं, नबी की मोहब्बत में नहीं, नबी की रजा के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने जो दीन दिया वो एक वहशी दीन दिया, जिसमें सरतन से जुदा पहले आता है, रहमत की बात नहीं है, अफो दरगुजर की बात नहीं है, माफी की बात नहीं है, सीने से लगाने की बात नहीं है, इंसान की कद्र कीमत की बात नहीं है, एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत के बाद का वहां नहीं है, वहां डायरेक्ट बच्चों को स्कूल के अंदर ये सिखाया जाता है कि सर तन से जुदा करो। ये नहीं कहा जाता हमारे नबी ने माफ किया, हमारे नबी ने गले लगाया। हम जब स्टूडेंट थे तो हम एक बुढ़िया की कहानी सुनते थे, हमने तो अपने पैगंबर का जो तसव्वुर बनाया था वो एक अजीम उल मर्तबत हस्ती जिसका कोई सानी नहीं, हकीकत भी ऐसा है। ये चीजें नहीं पढ़ाई जा, आप वो कह रहे सर तन से जुदा सर, और आप दोहरा रहे हैं, आप रटा लगवा रहे हैं, जैसे एक मुर्दे को तलकीन कराया जाता है, रिपीट कराया जाता है, क्योंकि मेमोरी डिलीट हो चुकी होती है, रिपीट कराया जाता है, वो इस तरह आप बच्चों को तलकीन करा रहे हैं। तो ये अगर रियासत भी इसके सामने अंधी हो, समाज तो वैसे अंधा हो चुका है, तो मेरे ख्याल में फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि तारीख में ऐसी कौमों का अंजाम क्या हुआ है। कुरान मजीद ने तो गुलिबतुर रूम पूरा सूरह रूम के अंदर बता दिया है, फिरौन और नमरूद और लूत और इस तरह की जितनी कौमें हैं उनको कहा वो खत्म हो गई, नाबूद हो गई हैं। ऐसी सोसाइटियां ज्यादा देर नहीं रहती। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब के साथ एक आपको प्रोग्राम करना चाहिए जो फिलोसफिकल हिस्ट्री है उसके ऊपर करना चाहिए, और स्पेशली आपको वेल ड्यूरांट की हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन जो किताब है उसके कुछ चैप्टर डॉक्टर साहब उर्दू में अगर लेक्चर की शक्ल में दे दें हमारे लिए, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है आने वाली जनरेशन। मैं इमरान भाई बस एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से सोल्यूशन बयान किया, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, स्टेट क्या करे। मैं इसी में ऐड करूंगा कि स्टेट को लौटना चाहिए वापस कायदे आजम और अलामा इकबाल के डिजाइन करदा पाकिस्तान की तरफ, और उसी जो सोच को लेकर वापस जो है पूरी स्टेट की तश्कील नो होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां करना पड़े और जगहों में करना पड़े, एजुकेशन सिस्टम में समाजी जो वैल्यूज हैं उसको डिजाइन करने में हमें वापस कायद अजम और अलामा इकबाल के पाकिस्तान की तरफ जाना, ये मसलकों और फिरकों के पाकिस्तान से निकलना जरूरी हो गया है। हमारे रियासत के सुतून में के अंदर अब ये जो मसलकी और फिरका वाराना और सूबाइयत और कौमियत और जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे शक्लों और चेहरों वाला पाकिस्तान, ये अब सराइयत कर गया नासूर की तरह। हमें यहां से निकलने के लिए वापस लौटना होगा कायदे आजम और आलम इकबाल के पाकिस्तान की तरफ।